नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसकी फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये हमारी लाइव पेशकश है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले लगभग 50 दिनों से भी अधिक समय से हम आपके साथ हर दिन जुड़ रहे हैं और इस बदलाव के दौर में जो कुछ भी बदलाव आ रहे हैं उसको अच्छे से एसिमुलेट करने की, इस बदलाव के साथ हम अच्छे से रिस्पॉन्ड करें इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमें से कुछ दोस्तों को थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ी है जहां पर ये बदलते हुए समय को अपने अंदर धारण करने में, इस चीज को एडजस्ट करने में, तो वो थोड़ा सा हेल्प जहां पर हम इमोशनल सपोर्ट हो या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस और विजडम हो वो हम ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज की यही आउटरीच रही है कि हमारे जिन दोस्तों को गाइडेंस की आवश्यकता पड़ी है वहां पर हम वो चीज ऑफर कर सकें। और ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राज्यों की भाई बहन जिन्होंने अपने लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया है, लाइफ के ज्यादातर हिस्से में उन्होंने मेडिटेशन के टीचर के रूप में भी भूमिका निभाई है, ऐसे लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे सवालों के लिए सीधे मार्गदर्शन देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन है जो आज हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में, विजडम को ऑफर करने के लिए हमारे गाइड के रूप में रहेंगे। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टम मीरा हैं। मीरा दीदी जी ब्रह्मा कुमारी इसके मलेशिया की निदेशिका हैं और देश विदेशों में अनेकों जगह पर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवा को आगे बढ़ाने में अथक प्रयास करते रहे हैं और आज भी करती हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि मीरा दीदी हमारे साथ हैं। मीरा दीदी, वेलकम टू द शो।
ओम शांति, गुड इवनिंग एंड ग्रीटिंग्स ऑफ पीस।
दीदी, बहुत सारे समय से ये जो समय ऐसा आया है, मेनी ऑफ अस वर कॉट ऑफ गार्ड, हम में से बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे ऐसे एक समय के लिए। मैं समझता हूँ हम में से कोई भी तैयार नहीं था। इट वाज जस्ट इट हैपेंड एंड एवरीबॉडी हैड टू लाइक ओके चलिए अब ऐसा आ गया है तो वी हैव टू डील विद इट। तो ऐसे समय में कुछ दोस्तों को थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस भी नए उभर कर आए हैं जिसके लिए लोग हमें गाइडेंस पूछते हैं। जो हमारे दोस्त प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में YouTube पे या Facebook पे, जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं और उन कमेंट्स को हम क्वेश्चंस के रूप में मीरा दीदी से पूछेंगे। अगर आप कोई सवाल नहीं है, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू गिव अस अ शाउट आउट, आपके दिल में कोई ख्याल है जो आप शेयर करना चाहते हैं, यू जस्ट वॉन्ट टू शेयर हाउ यूर फीलिंग, वो भी आप कर सकते हैं और वो भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे। दीदी, कुछ प्रश्न मैं शुरुआत में लेना चाहूंगा। कल हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल पूछे थे जिनका जवाब हम नहीं ले पाए थे। पहला प्रश्न ये है कि आज के इस दौर में जब ये चेंजेस आए हैं तो एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम भी शुरू हो गया है, तो ऐसे टाइम पे बच्चों को मैनेज करना बहुत सारे पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग एट होम, एट द सेम टाइम बच्चों को स्कूल के ऊपर भी उनको ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे बच्चों को पॉजिटिव रखना, बच्चों को एंगेज या बिजी रखने में उनको क्या करना चाहिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट महसूस करते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे?
सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देने के पहले मैं अपनी तरफ से बी द चेंज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो सारी टीम मेंबर्स को अपने तरफ से मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे समय पर लोगों को कुछ एनलाइटमेंट मिलता है तो बहुत खुशी होती है, इसलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। जो आपने प्रश्न पूछा है अभी, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये तो गृहस्थ में जो परिवार में रहते हैं उनके सामने तो ये समस्या जरूर आती होंगी। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले घर का जो वातावरण है ना, तो जब सब बच्चे माँ बाप सभी साथ में हैं, वो कोई घर से काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वातावरण जैसा होमली एंड कॉर्डियल वेलकम, उस वार्म वातावरण रहेगा तो जैसे कि पॉजिटिव फीलिंग्स होता है, वाइब्रेशंस, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि वाइब्रेशंस बनाने में थोड़ा अगर हम पुरुषार्थ करें माँ बाप, तो वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखे, लाइट रखे, तो वाइब्रेशन के आधार से ग्रहण करने की शक्ति, चाहे वो घर से काम करते हो या पढ़ाई करते हो, उनमें कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और उसमें रुचि भी होती है। तो मैं समझती हूँ ये तो सबसे पहले माँ बाप थोड़ा सा लक्ष्य रखे कि घर का वातावरण को ऐसा पॉजिटिव बना के रखे, लाइट बना के रखे और फ्रेश लगे, तो उसमें सबके लिए भी सुविधा है। और दूसरा कि हम समझते कि कुछ घंटे के बाद एक घंटा कंसंट्रेशन हो सकता है मैक्सिमम हमारा अनुभव के आधार से, तो उसके बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो तो कम से कम परिवार सभी साथ में होते हैं तो, या कोई कुछ ऐसे लाइट चिटचैट करे या कुछ कुछ म्यूजिक बजाए कुछ, मतलब दो घंटे एक घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक होगा तो डाइवर्शन होगा ना अटेंशन, फिर जब भी वापस पढ़ाई में जाएंगे तो फिर उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो बोरिंग नहीं लगेगा और भारीपन नहीं लगेगा, मैं समझती हूँ। तो ऐसे कुछ विधि अपनाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। कुछ और दोस्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि एक घंटे के प्रोग्राम में हम कुछ ही प्रश्न ले पाएंगे, तो आई ट्राई टू क्लब क्वेश्चन जब सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। रसीला शाह हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से और वो पूछते हैं, ओम शांति, मेडिटेशन के टाइम मन आकर्गा नहीं एकाग्र नहीं होता और मन दुनिया घूम लेता है, ऐसे में क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड अस, ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त इस लॉकडाउन में मेडिटेशन नए नए से सीख रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने सीखने की कोशिश की है, तो ऐसे टाइम पे ये थोड़े क्वेश्चंस मेडिटेशन से रिलेटेड आता है। इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है आफशीन का, जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो पूछते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट एंड थिंक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स।
आई थिंक बोथ दीज क्वेश्चंस आर कनेक्टेड एंड रिलेटेड, so I really appreciate Sister Rashila and the other person who is asking this question. So first of all, what I need to understand is what is meditation? No, meditation किसको कहा जाता है उसको यथारथ रीति समझना है। कई बार हम समझते कि meditation माने सिर्फ concentration करना है, so हम कोशिश करते beginning में ही एकदम concentration करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा pressure लगता है बुद्धि को। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कंसंट्रेशन करने की कोशिश ना करें। कंसंट्रेशन तो नेचुरली आएगा, तो यू स्टार्ट विथ जस्ट ऑब्जर्विंग थॉट्स, यू स्टैंड बैक तो सिर्फ थॉट्स को ऑब्जर्व करें एंड फील रिलैक्स्ड। अगर आप रिलैक्स कर सकते हैं बिगिनिंग में, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देन ऑब्जर्व योर थॉट्स, फिर वो संकल्प की गति धीरे हो जाएगा और संकल्प की क्वालिटी बदल जाएगा। देन सेकेंड स्टेप इज यू चूज एक या दो थॉट्स, तो उसके बारे में थोड़ा गहराई में जाए, विच वी कॉल इट एज कॉन्टेम्पलेशन। तो मेडिटेशन को सदैव पहले कॉन्टेम्पलेशन से चालू करें, फिर वो कॉन्टेम्पलेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं मनन, तो जब मनन करते हैं कॉन्टेम्पलेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मगन अवस्था आ जाती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से मेडिटेशन चालू ना करें, तो फिर आपको मन को दबा करके, मन को दमन करके कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव थॉट्स, वैसे तो मन में चार प्रकार का थॉट्स कंटिन्यूअस आता रहता है, कभी वेस्ट थॉट आता है, कभी नेगेटिव थॉट्स, कभी पॉजिटिव थॉट्स, कभी सिली फनी थॉट्स भी आते हैं, तो उसको हम रोक नहीं सकते। मेरे अनुभव के आधार से मैं समझती हूँ, अगर हम बुद्धि को हम जागृत रखें, तो हमारी पावर ऑफ डिसर्निंग, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति ठीक काम करेगा। तो जब भी हमको लगता है कि ये नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स के चिन्ह क्या होता है कि इनसिक्योरिटी, डाउट, असम्पशंस, गेसिंग, तो आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, जस्ट थिंक ऑपोजिट टू दैट। जब भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट आता है, मेरे को भय है अभी, तो आप कहो कि मैं निर्भय आत्मा हूं, आई एम ए फियरलेस सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। जस्ट डिसरिस्पेक्ट दैट नेगेटिव थॉट बाय थिंकिंग ऑपोजिट, सो द पावर ऑफ नेगेटिविटी गेट्स यू नो ऑटोमेटिकली वीक। तो जैसे आपके मन में आता है कि मेरे को यहां नहीं जाना है, डर लगता है, तो उसी समय नहीं, मैं जाऊंगी, मैं आई एम करेजियस वन, मेरे में ताकत है, हिम्मत है, मैं जाऊंगी। तो जब भी हम नेगेटिव थॉट्स के ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे, तो पॉजिटिव थॉट्स की जो एनर्जी है वो पावरफुल होने के कारण नेगेटिव थॉट्स की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धि को हमको जागृत रखना है। जितना हम बुद्धि को जागृत रखेंगे तो बुद्धि अगर हमारा ठीक निर्णय करता है, परखता है, तो हम मालिक होकर के अपनी संकल्पों को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं। तो ये ट्राई करके देखें। रोशिला बेन एंड द अदर सिस्टर हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वी अप्रिशिएट। बहुत अच्छा प्रश्न है
जी। थैंक यू दीदी। मैं समझता हूँ मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को, क्योंकि नए ऐसे सीख रहे हैं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन जरूर है, और जो गाइडेंस आप ऑफर कर रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसी मेडिटेशन से मिलता जुलता ही एक और प्रश्न है जो हमारे फ्रेंड पूछ रहे हैं। पूनम नाम है इनका, और पूनम हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं, और वो कहते हैं कल भी मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, सॉरी पूनम हम आज ले पा रहे हैं आपके प्रश्न को, कल हम नहीं ले पाए थे। शी आस्क्स कि मेडिटेशन की वजह से बॉडी की हीट इंक्रीज होती है क्या, या मेडिटेशन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट शरीर के ऑर्गन्स पे होता है क्या, प्लीज उत्तर दीजिए, ऐसा ये कहते हैं, आप क्या गाइड करना चाहेंगे।
पूनम बेन, आपके क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल लाइफ का है, तो वैसे मेडिटेशन करने से कोई हीट की इंक्रीजिंग तो नहीं होता है, क्योंकि मेडिटेशन के आधार से बॉडी की ऑर्गन्स की हार्मनी होती है, यू नो द पावर ऑफ माइंड। तो मैटर के ऊपर असर ये होता है कि अगर हमारे अंदर जैसे क्रोध से शरीर हीट हो जाता है तो काम और कूलनेस आते हैं, हीटिंग का तो कोई नाम ही नहीं। और मेडिटेशन करने से हमको ये फायदा है कि हम पहले मन को काम करते हैं और बॉडी कूल हो जाते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों हमारे ऊपर, पहले कर्मेंद्रियों हमको चलाते थे, अभी हम कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। तो जिस कर्मेंद्रियों को जब चाहिए तब हम चला सकते हैं कि मास्टरी, सेल्फ मास्टरी आ जाती है, तो हम अपने को जो आत्मा का जो निज गुण है शांति, उसकी अनुभूति में हम डीपनेस में चले जाते हैं। तो उसका जो शांति का प्रभाव है शरीर को काम और कूल करता है, कभी गर्माश की बात ही नहीं होती है उसमें। तो आप कोशिश करके देखिए कि सोचने की शक्ति को धीरे धीरे, तो वो मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति मेरा धर्म है, तो शांति का जो वाइब्रेशन शरीर को मिलता जाएगा तो एक एक ऑर्गन शरीर की काम और कूल होते जाएंगे। तो शरीर की जो हीट है वो भी कम हो जाता है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। बहुत सारे लोग मेडिटेटर्स पे जब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि मेटाबॉलिज्म रेट्स को रेगुलेट करते हैं, ब्रीदिंग स्पीड कंट्रोल में आता है। यूजुअली लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसके थॉट ज्यादा चलते हैं तो बॉडी का हीट भी बढ़ जाता है, तो मेडिटेशन उसका रिवर्स इफेक्ट करता है।
जब भी गुस्सा करते हैं तो नेचुरली मन की भी हीट बढ़ जाती है और शरीर की भी हीट बढ़ जाते हैं, परंतु उसके अपोजिट जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन शुभ चिंतन प्योर थॉट्स के ऊपर विचार चलता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो इट काम्स डाउन द बॉडी। अगर हीट भी है क्रोध का या कोई विकार के कारण, उसमें भी कूलनेस और कामनेस आ जाती। इसलिए योगी के लिए एक सदैव कहा जाता है द वन विथ काम माइंड एंड कूल बॉडी। कूल मीन्स इट इज लाइक सैंडलवुड, सैंडलवुड इज कूल बट इट इज फ्रेग्रेंट, सो दैट इज हाउ दे डिस्क्राइब ए योगी पर्सन।
मेडिटेशन से जुड़ा एक और प्रश्न है, जया हमारे साथ हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, यूट्यूब से लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। वो पूछते हैं व्हाट इज द गुड टाइम फॉर डूइंग मेडिटेशन, मेडिटेशन कौन से टाइम पे करना चाहिए, अच्छा समय कौन सा होता है।
जया बहन, आपका क्वेश्चन बहुत रीजनेबल है। वैसे तो राजयोग मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, कहां भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, परंतु अगर बेस्ट टाइम आप पूछते हैं ना, तो मैं तो यही कहूंगी बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। वाई बिफोर सनराइज, क्योंकि 4 से 5 इट इज क्रिएशन टाइम, और उसमें वातावरण में पॉल्यूशन नहीं होता है, दूषित नहीं होता है वातावरण, तो हम इजिली अपने आप से भी कनेक्ट कर सकते हैं और परमात्मा से भी कनेक्ट करते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम, 4 to 6। बिफोर सनराइज, और शाम को भी 6 से 7। इसलिए आप देखिए ना, मंदिरों में शाम के टाइम ही भगत जाते हैं मोस्टली, क्योंकि दिस द बेस्ट टाइम, इसमें पोल्यूशन कम होता है और सबके मन में एक डिवाइन स्पिरिचुअल फीलिंग्स होता है। रिटायरिंग टाइम, मॉर्निंग इज क्रिएशन टाइम, तो बेस्ट टाइम मैं तो यही कहती हूँ कि 4 to 6 एंड 6 to 7 इन द इवनिंग। बट राजयोग डजंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, यू कैन डू इट एनी टाइम एनीवेयर, इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर कुकिंग, इट्स पॉसिबल। बट द बेस्ट टाइम वेर यू कैन गेट कनेक्टेड। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट, बिकॉज दैट इज द अपॉइंटमेंट गिवन बाय गॉड टू मीट हिम। तो अगर उसी समय परमात्मा हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट दिया है, तो अगर हम उसी स्मृति से उठेंगे तो इसी से हमारा कनेक्शन हो जाता है ना। इस दुनिया में भी हम देखते हैं ना, अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करना है तो आप कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग करें, क्योंकि लाइन क्लियर होता है, यू कैन गेट द कॉन्टेक्ट वेरी इजिली। तो सुबह सुबह को परमात्मा ने हमारे लिए वो समय रखा है खास, तो वो हमारा खास टाइम है, तो उसी समय अगर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करके उठ के बैठेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। थैंक यू
दीदी। अगला सवाल है हमारे साथ, प्रीत यूट्यूब से जुड़े हैं और वो कहते हैं, अगर सुबह हम मेडिटेशन करने के बाद सो जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछते हैं।
ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने पूछा है?
प्रीत नाम है इनका।
प्रीत, प्रीत आपका परमात्मा के साथ बहुत प्रीत है, आपका नाम भी बहुत सुंदर है। वैसे मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, मैं कभी भी अमृत वेले के बाद मैं सोना नहीं चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो जो हमने इतना शक्ति भगवान से ली, इतनी अनुभव किया, तो सोने से वो जैसे कि हम गवा लेते हैं, इट गेट्स डिप्लीटेड। तो मैं सभी को एनकरेज करती हूँ कि अमृत वेले के बाद सोने के बदले इट्स ए प्राइम टाइम टू अर्न स्पिरिचुअल इनकम। आपको 3 बातें कर सकते हो, एक तो मेडिटेशन के बाद फौरन कोई ना कोई स्पिरिचुअल विजडम, यू रीच समथिंग स्पिरिचुअल, क्योंकि उसी समय हमारी जो सबकॉन्शियसनेस है ना वो बहुत एक्टिव होता है, सो इट विल अब्सॉर्ब व्हाट यू आर रीडिंग। और दूसरा कुछ लिखना है, यू डू सम जर्नलिंग, तो क्या है कि उसी समय हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो हमारी माँ सदैव कहती थी रात को जल्दी सो जाओ और सुबह सुबह उठ करके पढ़ो, तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अभी भी मैं राजयोग में 50 साल से हूँ, तो मैं यही रोज करती हूँ। तो पहले कुछ पढ़ना है स्पिरिचुअल विजडम, उसके बाद फिर कुछ लिखना है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज बॉडी के लिए भी, तो ये बैलेंस रहेगा ना, तो आपको जो एनर्जी आपने परमात्मा के संबंध से अनुभव किया है उसका बहुत फायदा रहेगा। तो ये प्रीत बहन, आप ये कोशिश करके देखिए, सोने को अवॉइड करें तो अच्छा है, मैं तो ये राय देती हूँ। सोने से जो हमने जो की थी ना कमाई, वो सारा, जैसे कि जब भी हम मुरली के लिए जाते हैं तो वो नशा सारा गुम हो जाता है। तो भले मुरली के बाद जैसे मॉर्निंग क्लास होता है ना, उसके बाद अगर हम थोड़ा रेस्ट करें वो तो कोई हर्जा नहीं, पर वो प्राइम टाइम है मॉर्निंग टाइम, उसमें हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे जीवन के लिए एक गिफ्ट बन जाएगा। तो कोशिश करके देखना हाँ प्रीति बहन।
जी थैंक यू सो मच दीदी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा जवाब भी आपने दिया। उन्होंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सप्लीमेंट किया था और उन्होंने पूछा था, क्योंकि हम 4 से 5 के बीच में मेडिटेशन करते हैं तो हमारे पास काफी खाली टाइम बचता है, ऐसा कह रहे थे, बट आपने बहुत इफेक्टिवली बता दिया कि उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। उषा हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं एंड उषा लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, और वो पूछते हैं कि व्हेन आई डू मेडिटेशन sometimes something which I don't think that thoughts also come, how should we stop our thoughts while meditating? इनका प्रश्न बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है, अक्सर करके जो ख्याल हम अदरवाइज भी हमारे मन में नहीं आता, थॉट्स दैट अदरवाइज ऑल्सो डोंट कम टू अस, एक्चुअली कम ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड समटाइम्स वी डोंट नो कि व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी. सो हाउ डू वी स्टॉप दीज थॉट्स फ्रॉम कमिंग व्हाइल मेडिटेटिंग?
उषाबेन, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने प्रश्न पूछा है तो ये पहले हमको समझना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं थॉट्स. देयर मस्ट बी सम रिजर्वॉयर और सोर्स, क्योंकि थॉट्स तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उड़ करके कहाँ से भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो संस्कार है ना, इट्स ए रिजर्वॉयर ऑफ थॉट्स. तो वो कभी कॉन्शियसली इमर्ज होता है, कभी अनकॉन्शियसली इमर्ज होता है, कभी सबकॉन्शियसली भी इमर्ज होता है. तो इसमें कोई हमको चिंता करने की बात भी नहीं, उसको सप्रेस भी नहीं. डोंट गिव अटेंशन, जस्ट इग्नोर इट. इट्स नथिंग कनेक्टेड विद द प्रेजेंट. तो कोई भी हम आत्मा के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों रिकॉर्डिंग भरा हुआ है ना, वो समटाइम्स सबकॉन्शियसली इमर्ज होता है, समटाइम्स कॉन्शियसली इमर्ज होता है. वी शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट, यू जस्ट इग्नोर देम. उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन में नहीं चले जाना है, तो फिर वी लूज द प्रेजेंट मोमेंट. तो उसको जैसे कि इग्नोर कर देना. सम सिली फनी थॉट्स विच हैज नो मीनिंग, यू नो, ऐसे पॉप इन, जस्ट दे पॉप इन, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसको अटेंशन नहीं देना है. तो आप जो थॉट्स से मेडिटेशन चालू किया है, यू डोंट गेट कैरिड अवे विद दोस थॉट्स. यू जस्ट कीप विद योर ट्यून, वट एवर थॉट्स यू हैव क्रिएटेड, यू जस्ट कंटिन्यू विद दैट, सो दीज थिंग्स विल डिसअपियर.
जी
ठीक है उषा बेन.
यदि मैं समझता हूँ उषा जी को ये जवाब पसंद आएगा. सोनू हमारे साथ YouTube से जुड़े हैं एंड उनका प्रश्न है, मैंने अभी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है और मेरा क्वेश्चन है कि मिनिमम टाइम पीरियड कितना लगता है सेल्फ को अच्छे से रियलाइज करने में, या फर्स्ट स्टेज को जिसको कहेंगे जहां से हम अपलिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो कितना टाइम लगता है वहां पहुंचने में, पूछते हैं.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोनू भाई. तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना. तो मैं समझती हूँ फर्स्ट मंथ अगर आपने अभी अभी चालू किया है, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट पीपल. फर्स्ट मंथ मॉर्निंग 10 मिनट्स, इवनिंग 10 मिनट्स, यू सिट एंड डिसिप्लिन. अब बैठ करके 10 मिनट जो आपको संकल्प दिया गया है कि जिस प्रकार से सोचना है, वो अभ्यास आप कीजिए. और सारे दिन के अंदर जो आत्मस्मृति के बारे में, चलते फिरते खाते पीते, मे बी स्टॉप फॉर 1 मिनट एवरी आवर एंड आस्क दैट क्वेश्चन. यू नो, चार बातें मेडिटेशन में हम सोचते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ. जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट क्वेश्चन, स्लो डाउन. फिर शाम को 6 से 7, जैसे बताया ना मेडिटेशन करने का अच्छा टाइम है, तो अगर हो सके तो बिटवीन 7 to 7:30, उसमें 10 मिनट फर्स्ट मंथ आप कीजिए. देन सेकेंड मंथ स्लोली इंक्रीज इट टू 20 मिनट्स. तो थर्ड मंथ मैक्सिमम 1/2 आवर 2 times a day, इतना तो चाहिए. क्योंकि जब तक आप 1/2 आवर बैठ करके संकल्पों को, 3 stages है ना राजयोगा मेडिटेशन में, जर्नी इनवर्ड्स, जर्नी अपवर्ड्स, जर्नी आउटवर्ड्स. पहले आत्माभिमानी बनना है, फिर हम अपनी बुद्धि को घर के तरफ ले जाते हैं, फिर हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं. तो उसका, उसके बाद कुछ समय हम शांति में रहे, उसका फीलिंग, उसका रस भी ले, इसलिए 1/2 आवर इज इम्पोर्टेंट. तो अगर आप 3 मास में ये रेगुलर करें, तो डेफिनेटली आपके मेडिटेशन का अनुभव और आपको मेडिटेशन में जो कंसंट्रेशन हम चाहते हैं, परमात्मा से मिलन का अनुभव हम चाहते हैं, वो सहज रीति कर सकते हैं. एंड टुगेदर विद दैट आई वुड लाइक टू गिव यू 4 ingredients टू एनहांस योर मेडिटेशन. फर्स्ट इज यू मस्ट नो द राइट मेथड. मेथड आपका ठीक होना चाहिए. देन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द मेथड, जो आपको टेक्निक बताया गया है ना, उसके अनुसार प्रैक्टिस कीजिए. और थर्ड इज एक्चुअली कंसिस्टेंसी. कोई भी प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, एक दिन किया, शाम को किया, सुबह नहीं किया, नहीं. डिसिप्लिन योर माइंड, कंसिस्टेंसी. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज एक्सपेरिमेंटेशन. माना जो मेडिटेशन का जो थॉट्स है ना, आपके जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखिए. फॉर एग्जाम्पल, समझो आप ऑफिस में काम करते हैं, तो जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो उसी समय तो मेडिटेशन नहीं करेंगे ना. परंतु अगर आपने उसी दिन सवेरे मेडिटेशन किया था 20 मिनट, तो आपने कॉन्सेंट्रेशन अनुभव किया था, वो आपके अंदर शक्ति भरी हुई है. तो जब ऑफिस में आपको ये लेटर टाइप करना है, पहले आप आधा घंटा लेते थे, तो बिकॉज मेडिटेशन इन एक्शन, वो कॉन्सेंट्रेशन आपको इतना मदद करेगा, तो आप 10 मिनट में वो काम पूरा कर देंगे. तो 20 मिनट फिर भी आपको बचेगा टू रिलैक्स. सो मेडिटेशन इन एक्शन. ऐसे कोई भी हम देखते हैं ना, घर में भी कोई भी काम करना है, तो मेडिटेशन के साथ साथ कर्म करने से तीन बातें दिखाई देता है. जैसे भगवद गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम. माना योग मेक्स योर एक्शन इनटू एन आर्ट. तो आपकी एक एक एक्शन कला के रूप से दूसरों को दिखाई देगा. इफ देयर विल बी ब्यूटी, देयर विल बी क्वालिटी, एंड देयर विल बी एक्यूरेसी. आपको बहुत टाइम बच जाएगा. मेरा अनुभव के आधार से जब हम किसी को कहते हैं ना मेडिटेशन करो, वो कहते हैं कि हमको टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी है. देन स्टिल वी परस्यूएड देम, देन दे स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड आफ्टर दैट आके बोलते हैं कि बहन जी अभी तो हमको बहुत टाइम मिलता है, आई एम सो फ्री, यू नो आई हैव टाइम टू लिसन टू म्यूजिक, टॉक टू फैमिली मेंबर्स. पहले ऐसा नहीं होता था, बिकॉज यू मैनेज टाइम वेरी वेल, बिकॉज यू मैनेज योर थॉट्स. यू नो मेडिटेशन इज थॉट मैनेजमेंट. तो जब आप थॉट को मैनेज करने की कला सीख लेते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है. ट्राई करके देखिए. हाँ सोनू भाई
जी. दीदी, अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ. ये दो तीन क्वेश्चंस को क्लब करके हम पूछ रहे हैं. शैलजा हमारे साथ हैं फेसबुक पे, वो कहते हैं, हेलो ओम शांति, मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ, मैं कभी कभी मेडिटेशन करना भूल जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये इनका फीलिंग है. फिर दूसरा प्रश्न ये है कि ये काजा खाजी हैं हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, वो कहते हैं आई फील असलीप वाइल मेडिटेटिंग सिस्टर प्लीज हेल्प. कहते हैं मैं समझता हूँ ये बहुतों के साथ होता है. सो थैंक यू फॉर पुटिंग दैट क्वेश्चन. एंड आई बिलीव देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑन सिमिलर लाइंस, बट आई थिंक ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है. एक तो मेडिटेशन के टाइम पे सोना है और नींद आ जाना है, और दूसरा ये है कि जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं या मिस आउट कर देते हैं तो हम गिल्टी फील करने लगते हैं, बुरा लगने लगता है, अरे आज मिस कर लिया, मिस कर लिया, तो क्या करना है.
शैलजा बहन का जवाब हम ये देना चाहते हैं. शैलजा बहन, तो वैसे आप कभी गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है. मेडिटेशन इज वे ऑफ लिविंग, ये जीवन का अंग है. मेडिटेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज फॉर ऑल टाइम, इसन से. तो आप मेडिटेशन को, लाइफ को अलग नहीं कीजिए, डोंट सेपरेट. यू नो जीवन के साथ जुड़ना है. जैसे समझो अभी हम आपसे बात कर रही हूं, भले आपके शरीर हमको दिखाई देता है, परंतु बिहाइंड माय माइंड, इन माय सबकॉन्शियस माइंड, आई एम अवेयर, आई एम टॉकिंग टू यू एज ए सोल, एंड आई नो यू आर ए सोल, पीसफुल सोल, एंड यू आर चाइल्ड ऑफ शिव बाबा. सो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में है, परंतु कॉन्शियसली हम आपको शरीर को देख रहे हैं. दिस इज मेडिटेशन. यू नो मेडिटेशन में कोई बैठ करके लोटस पोस्चर में बैठना है, आंखें बंद करना है और कोशिश करना है मेरे को नहीं सोचना है, ये मेडिटेशन नहीं है. हम इसलिए कहते हैं कि बैठ करके करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन करने के लिए माइंड को. परंतु वास्तव में राजयोग का मेडिटेशन का मतलब यही है कि हम इसको जीवन के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करें, चाहे व्यवहार में, चाहे परमार्थ में, चाहे आध्यात्मिक जीवन में. तो जब आप मेडिटेटिव थॉट्स जो है ना, उसको अगर आप जीवन के साथ मिला के चलाएंगे, तो आपको कभी भी लगेगा ही नहीं कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो. योर लाइफ बिकम्स अ लाइफ ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव थॉट्स, और आपके अंदर सदी खुशी रहेगा, लाइटनेस रहेगा, तो आपकी थॉट्स ही आपको बताएगा कि किस रीति से आप चल रहे हैं। तो इसलिए मेडिटेशन अलग नहीं करें, अब भी मेडिटेशन में बैठना है। तो बाकी समय हम क्या करते थे, हम भूल गए थे क्या हम आत्मा हैं? तो जब भी आप शब्द यूज करें ना मैं, तो उसी समय आई मीन्स आई एम ए सोल। तो इसलिए हम कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। तो सोल कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियसली भी याद रहे, और हम सोल सुप्रीम सोल की संतान है, तो ऑटोमेटिकली हम कर्म भी कर रहे हैं उसी स्मृति से, तो हमारे कर्म भी जल्दी भी पूरा हो जाएगा, उसमें क्वालिटी भी होंगी। बाकी जो दूसरा प्रश्न पूछा है, मेडिटेशन में नींद आ जाती
जी, वैसे ही मिलता जुलता एक और सवाल है दीदी, इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है, विश्वनाथ कुमार हैं, वो भी सेम प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं आई डोंट गेट मच थॉट्स ड्यूरिंग मेडिटेशन, बट इन द ब्लैंकनेस ऑफ माइंड आई एम नॉट श्योर इफ आई डोज ऑफ और आई एम मेडिटेटिंग। ये प्रश्न आता है,
ये तो बहुत उनका प्रॉब्लम है, आप सिर्फ आपका नहीं है परंतु बहुतों का प्रॉब्लम है मेडिटेशन में, क्योंकि हम समझते हैं कि मेडिटेशन माना टू मेक माय माइंड ब्लैंक, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट पीपल थिंक। मेडिटेशन मीन्स डोंट थिंक, मेडिटेशन मीन्स टू सप्रेस द माइंड, मन को दमन करना है, कुछ नहीं सोचना है। तो हम कोशिश करते हैं ना कुछ नहीं सोचना है ब्लैंक करने के लिए, तो माइंड इंटेलेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमारा चिंतन कोई नहीं चल रहा होता है ना। जब भी कोई चिंतन ही नहीं चल रहा है तो क्या होगा, नींद ही आ जाएगा। जब नींद हम करते हैं तो हम क्या सोचते, कुछ नहीं सोचते। तो हम तो कहते हैं कि अगर हमको इसको अवॉइड करना है स्लीप को मेडिटेशन में, तो हम माइंड इंटेलेक्ट को एक्टिव रखे, लेट द माइंड इंटेलेक्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन मेडिटेशन। तो मन में आप माइंड इज लाइक ए प्रोजेक्टर स्क्रीन और इंटेलेक्ट इज लाइक ए ऑब्जर्वर अंडरस्टैंडिंग। तो आप समझो सोचेंगे मैं आत्मा हूं, तो ये संकल्प मन में किया तो साथ में मन मन की स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज मन में लाए, और इंटेलेक्ट उसको समझेगा कि ये चैतन्य शक्ति है, तो उसका फीलिंग आना चालू होता है। ये नींद क्यों आता है, बिकॉज हम जो सोच रहे हैं ना उसके अनुसार हमारे अंदर फीलिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ चैंटिंग मेडिटेशन नहीं है, जो कमेंट्री में जो सिखाया गया है उसको सिर्फ रिपीटेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन में डिसिप्लिन पैटर्न ऑफ थॉट्स, एक संकल्प आपने सोचा उसके पीछे जो फीलिंग है, लेट योर माइंड बी फिल्ड विद दैट फीलिंग एंड यू एंजॉय दैट फीलिंग बिफोर यू थिंक अनदर थॉट। तो अगर हम मन और बुद्धि को कॉन्टेम्पलेशन विजुअलाइजेशन में एक्टिव रखेंगे तो ये जो नींद करने का नशा है, स्लीपिंग का नशा है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन और उसमें अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव, तो यू आर लॉस्ट इन दैट एक्सपीरियंस, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉलिंग अस्लीप। सो कीप योर माइंड एंड इंटेलेक्ट एक्टिव बाय कॉन्टेम्पलेशन एंड विजुअलाइजेशन, इम्पोर्टेंट, क्योंकि मन स्क्रीन है ना, तो मन के ऊपर हम जो सोचते उसका इमेज विजुअलाइज करते हैं, उसके पीछे जो फीलिंग्स है वो हम जितना समय तक चाहे उतना हम रख सकते हैं अपने पास, तो उसको एंजॉय करना चालू करेंगे तो आपका स्लीप खत्म हो जाएगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने, और आज बहुत सारे हमारे दोस्त मेडिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। विकास अग्रवाल हमारे साथ हैं, विकास जी का प्रश्न है, ओम शांति, माय क्वेश्चन इज टिल वी आर क्रिएटिंग थॉट्स इन मेडिटेशन एट कॉन्शियस लेवल, इज इट रियली मेडिटेटिव स्टेट, एज आई हैव हर्ड दैट मेडिटेशन इज गोइंग बियॉन्ड कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं कि मेडिटेशन में जब हम थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं कॉन्शियस लेवल पे, तो क्या वो सही में मेडिटेशन है, क्योंकि उन्होंने सुना है ऐसा कि मेडिटेशन का मतलब कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड जाना है ऐसा, आप क्या एडवाइस करेंगे?
ओम शांति विकास भैया, तो आपका क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब मेडिटेटर्स को ये प्रश्न आता है कि मेडिटेशन माना लोग सोचते हैं कि सोचना नहीं है, यू नो गोइंग बियॉन्ड थिंकिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। लॉजिकली आप सोचिए, इट इज द नेचर ऑफ द माइंड टू थिंक। मन का नेचुरल स्वभाव है सोचने का, आप उसको बियॉन्ड सोच कैसे कर सकते हैं? तो फिर इसलिए हमको कई बार हेडेक आ जाता है, यू नो किसी किसी को मेडिटेशन करने के बाद सिर का दर्द आता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करते हैं नेचुरली जो थॉट्स आता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कि मेडिटेशन थिंकिंग से भी एकदम खाली मन को खाली कर देना, बट इट्स एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपका मेडिटेशन के टाइम नॉर्मल रीति से संकल्प नहीं चलेगा, जो साधारण सारे दिन के अंदर हमारा जो सोच है ना वो कितना स्पीड से चलता है और कितनी वैरायटी थॉट्स होता है, कभी हमको भी समझ में नहीं आता है। तो अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो वी यूज आवर माइंड इन ए पॉजिटिव वे। तो आपका जो मन में जो संकल्प है वो सकारात्मक विचार, और सकारात्मक विचार फास्ट स्पीड में नहीं होता है। सकारात्मक विचार इट इज इन स्लो स्पीड, सो यू कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ ईच थॉट। तो वो यही मेडिटेशन का रियल डेफिनेशन है, टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ माय माइंड इन द राइट डायरेक्शन। जो मन की जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी, उसको हम राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं। तो कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हम ना करें कि मेडिटेशन माना बिकमिंग थॉटलेस। इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम थॉटलेस, इट इज द नेचर ऑफ द माइंड टू थिंक, बट ओनली डिफरेंस इज व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू यूज योर माइंड इन ए पॉजिटिव वे। तो वो पॉजिटिव वे में यूज करने के कारण वी फील एम्पावर्ड, एनर्जाइज्ड आफ्टर मेडिटेशन। तो हमारी मन की जो क्लैरिटी है, मन की जो शांति है, उसका अनुभव होता है। तो इसलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जस्ट यू नो मन को खाली करने की कोशिश न करें, परंतु मन में संकल्प आना नेचुरल है, परंतु उसको सकारात्मक रखें। इसलिए टेक्निक ठीक तरह से सीखना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या सोचना चाहिए, सेकेंड स्टेप मेडिटेशन में क्या सोचना चाहिए, तो अगर हमारी जो टेक्निक ठीक है तो हम जो हमारे लक्ष्य है मेडिटेशन से प्राप्त करने का, वो हम प्राप्त कर सकते हैं।
जी दीदी, अगले की तरफ मैं ले चलता हूँ। अगला प्रश्न हमारे एक और फ्रेंड पूछ रहे हैं, वो मन की शांति के बारे में पूछ रहे हैं। आपने अभी अभी बातों में ये कहा कि हम मन को फोर्सफुली शांत करना चाहते हैं, अपने मन में कोई विचार ही नहीं आने चाहिए, उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। वो तो नहीं किया जा सकता ऐसे आपने बताया, पर फिर भी अक्सर हम देखते हैं कि हम मन की शांति के बारे में बात करते हैं। तो निधि हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से, और निधि का प्रश्न है, निधि मन के शांति के लिए कुछ सुझाव या उपाय बताएं, ऐसा ये पूछते हैं।
ओम शांति निधि, ये तो सभी ओम शांति भी मन शांति तो सभी अभी ढूंढ रहे हैं। सबको मन की शांति चाहिए, परंतु रॉन्ग रास्ते पर ढूंढ रहे हैं। कोई पहाड़ों पर जाते हैं, कोई गुफा में जाके बैठते हैं, शांति मिलेगा, परंतु शांति वास्तव में इज वन ओनली वन थॉट अवे। शांति, मन की शांति कहां बाहर जाकर के ढूंढने से नहीं मिलेगा, परंतु पहले हमको समझना है मन क्या चीज है, और दूसरा व्हाट इज पीस। तो हम तो समझते कि आज आप पूछेंगे ना कोई बच्चे को व्हाट इज पीस फॉर यू, वो कहेंगे कि व्हेन मम्मी डैडी डोंट फाइट एट होम दैट इज पीस। इफ यू आस्क ए पॉलिटिशियन व्हाट इज पीस, दे से नो वॉर दैट इज पीस। इफ यू आस्क यू नो साइकोलॉजिस्ट, इट्स दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो वास्तव में पीस इज ए वे ऑफ लाइफ। तो वो पीस, हमारा जो अपना आत्मा का स्वधर्म है, उसका अनुभव हम कैसे कर सकते जब हम मन को जानते हैं। So what is mind? You know, mind is the power of thinking of the soul. तो पहले हम अपने आप को समझे मैं कौन हूं. ये मनुष्य का शरीर दो चीजों से बना हुआ है, आत्मा और शरीर. आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है. तो आत्मा के अंदर तीन शक्तियां है, मन बुद्धि संस्कार. तो मन की शांति हम चाहते हैं ना, तो हम क्यों चाहते हैं मन की शांति? कभी तो अनुभव किया होगा, इसलिए हमको याद आता है, वो हमको वापस चाहिए. तो मन की शांति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन रूपी घोड़े, जो बुद्धि है घोड़े सवार, बुद्धि है घोड़े सवार, मन है घोड़ा. तो हमने क्या जीवन में लॉस्ट किया है जिसके आधार से शांति हमारी खत्म हो गई? लगाम, घोड़े का लगाम हमारे हाथ में नहीं है. माना आत्मिक स्मृति को हम भूल गए, मैं आत्मा हूं ये हम भूल गए, हम अपने को शरीर समझ लिया, तो शांति हमारे से दूर हो गई. तो वास्तव में मन शांति मुझ आत्मा का ही स्वधर्म है, शांति मेरा ही ओरिजिनल गुण है. परंतु वो शांति को हम नेचुरली अपने जीवन में तब अनुभव कर सकते हैं जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे. इसलिए कहा जाता है ना मन की शांति. कभी हम नहीं कहते तन की शांति या बुद्धि की शांति, क्योंकि जब मन में हमारा संकल्प सकारात्मक होता है तभी हमारे मन में शांति का अनुभव हो सकते. दैट इज वाई पीस इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. तो हमारे मन में जब सकारात्मक विचार चलता है, और मन में सकारात्मक विचार तब चलेगा जब आप अपने को आत्मा समझ के सोचेंगे. तो आत्मिक स्मृति में रह करके हम सोचते हैं तो मन में सकारात्मक विचार चलेगा, तो उसमें शांति भरी हुई है. तो शांति के लिए कहां बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो सिर्फ आप अपने जो स्मृति है, मैं देह हूं, मैं मानव हूं, उसके बदले ये सोचना चालू कर लीजिए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं, मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है. तो आप अंदर से शांति का अनुभव करना चालू कर देंगे. तो जब एक व्यक्ति घर में शांत रहते हैं, उसका जो शांति का वाइब्रेशन है सारे घर में फैल जाते हैं. तो एक व्यक्ति, वन पर्सन मेक ए डिफरेंस. तो स्मृति को चेंज कर लीजिए तो शांति, तो इट्स योर स्टेट ऑफ माइंड, इट्स योर ओरिजिनल रिलीजन, आपका निजी गुण ही शांति है. तो बाहर शांति नहीं रखा है, अंदर देखना है. और मेडिटेशन द्वारा हम शांति का अनुभव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम अपने फर्स्ट थॉट मेडिटेशन में पॉजिटिव थॉट से चालू करते हैं. मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं. ये जो पॉजिटिव थॉट्स हम जैसे सोचना चालू करते हैं तो अंदर से वो शांति नेचुरली इमर्ज होता जाएगा. और जितना ज्यादा समय उस स्मृति को हम बना के रखेंगे उतना ज्यादा समय हम शांति का अनुभूति बना के रख सकते हैं. तो कोशिश करके देखिए.
जी दीदी, जो आप ये बात अभी कह रहे थे, आपकी बात से जुड़ी हुई एक सवाल साथ साथ में आया था और वो स्क्रीन पे भी दिखाया गया. मनीष ने ये सवाल पूछा था कि मेरे दिमाग में हर समय कुछ बात चलती रहती है तो इसको कैसे कंट्रोल करें, और आपने उसको ब्यूटीफुली आंसर कर दिया इससे पहले कि हम प्रश्न पढ़ पाए. आई होप मनीष को वो जवाब मिल गया है. हमारे पास लगभग 15 मिनट और हैं, तो मैं दो तीन क्वेश्चंस को एक साथ क्लब करता हूं. सुश्री दास हैं और वो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूछते हैं, हाउ टू हील माई रिलेशनशिप इफ द रिलेशनशिप इज सडनली ब्रोकन डाउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन. ये रियल लाइफ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप इश्यूज में. ऐसे ही मिलता जुलता एक और प्रश्न है जो शिल्पा ठाकुर हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं और वो भी पूछते हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए? डाइवोर्स चल रहा है तो क्या करना चाहिए? मेडिटेशन से हीलिंग हो सकती है क्या रिलेशनशिप की? ऐसा ये पूछते हैं. तो दोनों रिलेशनशिप से जुड़े प्रश्न हैं, सुश्री और शिल्पा का प्रश्न.
सो आप दोनों का प्रश्न का जवाब ये मैं कह सकती हूँ कि मेडिटेशन द्वारा इट इज पॉसिबल टू हील रिलेशनशिप. क्योंकि जब हमारा संबंध कम्युनिकेशन कनेक्शन रिलेशनशिप परमात्मा से ठीक रहता है। एक होता है वर्टिकल रिलेशनशिप, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। तो वर्टिकल रिलेशनशिप ऊपर रहने वाला परमात्मा है, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन है हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ठीक ही रहेगा। तो मैं समझती हूँ जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसलिए आता है, सबसे पहले कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। यू नो, जब भी हम रिलेशनशिप में हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, रिलेशनशिप सफर्स। तो इसलिए ये हमको अटेंशन रखना है, भले आपस में कितना भी मतभेद हो, डिफरेंसेस हो, बैठ करके बातें करना, कम्युनिकेशन करना, अदरवाइज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग विदाउट कम्युनिकेशन। और दूसरा क्या है कि अगर हमको रिलेशनशिप से को हील करना है तो हमको वी नीड टू हैव ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप। तो एक व्यक्ति ऑनेस्ट है, दूसरा व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है, तो भी रिलेशनशिप हीलिंग होना मुश्किल होता है। इसलिए ऑनेस्टी इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, यू नो, वो हमको कम्युनिकेशन में भी मदद करेगा। और ऑनेस्टी रहने से एक दो को अंदर से हम समझ सकते हैं। और तीसरा, कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके कारण हमारी कभी रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होता है, वो पावर ऑफ लिसनिंग। हमारे में से बहुत लोगों को कॉन्शियस लिसनिंग नहीं आता है, वी आर पैसिव लिसनर्स। इसलिए कि हमारे अंदर ईगो है, तो ईगो के कारण वी डोंट हैव पेशेंस टू लिसन टू द अदर पर्सन एक्टिवली, एंड दे डोंट फील यू नो दैट यू हैव हर्ड व्हाट दे हैव सेड बिकॉज यू हैव नॉट लिसन विद पॉजिटिव फीलिंग। तो ये भी हमको सीखना है रिलेशनशिप में कि वी शुड बी एक्टिव लिसनर्स, नॉट पैसिव लिसनर्स। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो अगर हम सिर्फ वी आर ओनली लिसनिंग, वी आर ओनली हियरिंग एंड नॉट लिसनिंग, सो देयर इज नो सेटिस्फेक्शन। सो इन द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वी शुड पे अटेंशन टू आवर कम्युनिकेशन, एस्पेशली इन लिसनिंग, बिकॉज 80% ऑफ द कम्युनिकेशन इज इन लिसनिंग ओनली। और तीसरा विशेष, अगर हमको रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए या रिलेशनशिप कम्युनिकेशन ठीक रहे, उसके लिए दूसरा भी एक हमको जीवन में धारणा चाहिए कि जितना हो सके हम अपनी रिलेशनशिप में क्लियर रहे, यू नो, क्लैरिटी इज नेसेसरी। तो मेडिटेशन के आधार से हम अपने आप को भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझ सकते हैं, क्योंकि अपने आप को सिर्फ समझना इनफ नहीं है, दूसरों को भी समझना है कि वो कहाँ से ये बोल रहे हैं। तो जब हमारे अंदर ये कर्टिसी रहेगा, हमारे अंदर लव भी रहेगा और हम समझते हैं एक दूसरे को, तो फिर हम वो स्पेस दे सकते हैं। वी हैव टू गिव स्पेस। इसलिए हमने कई बार देखा है हस्बैंड वाइफ यू नो कोई कारण से डिवोर्स हो जाते हैं, और डिवोर्स होने के बाद उनका लव और भी बढ़ जाता है। देन दे कैन बी फ्रेंड्स, दे कैन बी ओपन, दे कैन कम्युनिकेट मोर फ्रीली। परंतु ये जो एक्सपेक्टेशन होता है ना रिलेशनशिप में, कंडीशंस होता है हमारे मन में, तो वो एक्सपेक्टेशन जब भी फुलफिल नहीं होता है, डिसअपॉइंटमेंट के कारण कई नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो इसलिए जब हम अपना सर्व संबंध परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार मिलता है, तो हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप प्यार लेने के लिए नहीं रखते हैं, इट इज फॉर शेयरिंग। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ना होने के कारण डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है। तो इसलिए परमात्मा को सर्व संबंध से, अगर हम परमात्मा से सर्व संबंध का प्यार भी लेते हैं, तो जैसे कि अंदर में भरपूरता फील होते हैं, तो जब हम दूसरों के संबंध में आते हैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, वो हमको प्यार दे, वो हमको अटेंशन दे, नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। परंतु हम संबंध में आते हैं देने के लिए, न कि लेने के लिए। तो ये अगर हमारा मोटिव होगा तो रिलेशनशिप बहुत सहज ही हील हो सकता है।
दीदी, ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि रिलेशनशिप स्टिल मेडिटेशन कितना हेल्पफुल हो सकता है, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग उसे यूज करके देखेंगे तो शायद वो पता चलेगा। इट इज समथिंग टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑन योर ओन। मैं समझता हूँ हमारे पास 10 मिनट है, बट उसमें मैं 5 मिनट मेडिटेशन के लिए यूज करूंगा आज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेडिटेशन से रिलेटेड आए हैं। एंड नो डाउट आज बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है, मेडिटेशन के डाउट्स क्लियर हुए हैं बहुत सारे लोगों को। मैं मेडिटेशन के लिए ज्यादा टाइम देना चाहूंगा। मैं दो क्वेश्चन को लास्ट में क्लब करना चाहता हूँ। डॉक्टर स्नेहा हमारे साथ हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। इससे मिलता जुलता प्रश्न अमित ने पूछा है। अमित हमारे साथ, अमित राजा नाम है इनका, और अमित प्रश्न पूछते हैं, आफ्टर नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन बट मेडिटेशन को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें गाइडलाइंस थोड़ा प्रोवाइड करें, ऐसा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आज मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, फिर शाम को मेडिटेशन करने बैठे, नींद आया, बोर हो गए, तो फिर अगले दिन करने का इंटरेस्ट नहीं रहता। सो हाउ डू वी कीप डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, की भाई मेडिटेशन को डिसिप्लिन कैसे बना लें, कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसके बारे में गाइड करें। डॉक्टर स्नेहा और अमित का प्रश्न।
तो डॉक्टर स्नेहा और अमित, तो आपका प्रश्न के लिए जवाब मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन इज कनेक्टेड विद डिटर्मिनेशन। तो अगर हमारे अंदर कोई भी काम करने की डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो डिसिप्लिन हम नहीं बना सकते। और दूसरा कि वी नीड टू ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ, क्योंकि सवेरे उठने के बाद वी नीड टू ऑर्गेनाइज अवर डे, यू नो, कि अपने समय को और अपने संकल्प को हम किस रीति से यूज करेंगे, कब क्या करेंगे। सो व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज यू कैन बी डिसिप्लिन। और दूसरा कि ऑर्गेनाइज करने में यू हैव टू गिव राइट प्रायोरिटीज। तो कभी क्या होता है कि सवेरे सवेरे के टाइम हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, उसी समय हम यूजलेस काम में लग जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम है वो बाद में रख देते हैं। तो सिंपल सिंपल इजी काम कर लेते हैं जब एनर्जी होती, तो जब हम थक जाते हैं देन वी टेक अप द सीरियस मैटर्स, तो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज। तो मेरा अनुभव के आधार से मैं क्या करती हूँ, प्रायोरिटाइज योर ऑर्गेनाइज डे रूटीन, एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए बहुत एनर्जी देना है, जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, डू दैट फर्स्ट एंड गेट आउट ऑफ द वे, सो देन यू आर फ्री। तो अगर वो काम नहीं किया तो वो सिर पर रहेगा, तो जो भी बाकी आपने एनर्जी यूज कर दिया बाद में उसमें करने में मुश्किल होगा। तो इसके लिए डिसिप्लिन करने के लिए हमारे अंदर लक्ष्य भी क्लियर होना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, आज का लक्ष्य क्या है। यू नो, यू नीड टू क्रिएट एन एम, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड देन यू कैन सेट अ टारगेट, आज हमको क्या प्राप्त करना है। तो तभी यू कैन यूज योर एनर्जी ऑफ द माइंड इन द राइट वे। डिस्ट्रैक्टर्स तो बहुत होगा, यू नो, कई अपनी फ्रेंड्स भी होंगे, टेलीफोन भी होंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कई बातें आएंगी, परंतु यू हैव डिटर्मिंड दैट यू नीड टू डू दिस, सो यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो डिसिप्लिन के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ चाहिए, नहीं तो आप सदैव कहेंगे कि 24 आवर्स इनफ नहीं है, हमको बहुत काम है, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप सवेरे अमृत वेले के बाद थोड़ा सा थिंग्स टू डू फॉर द डे आप लिख दीजिए, स्थूल में भी क्या क्या करना है, और उसके अनुसार आज हम मन को क्या काम देंगे। बाबा हमको यही सिखाते हैं कि रोज मन बुद्धि आपकी टीचर, स्टूडेंट है, आप टीचर हो तो उनको होमवर्क दे दो, ये सब आपको होमवर्क करना है, मन को क्या सोचना है, बुद्धि को क्या करना है। फिर वो होमवर्क दे दिया तो मन बुद्धि बिजी रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाते हैं, वो मन को इधर उधर भागने की अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। तो ये आप करके देखिए। तो फिर हम डिस्ट्रैक्शन कितना भी आवे, जब तक हमने जो एम रखा है उसको हमने पूरा नहीं किया है, तो दूसरी तरफ हमारा बुद्धि नहीं जाएगा। सो डिटर्मिनेशन एंड ऑर्गेनाइज रूटीन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेटिंग गोल. सो देन आपके अंदर योग में भी मेडिटेशन में भी आपका थॉट्स डिसिप्लिन रहेगा. और इम्पोर्टेंट बात हम ये कहना चाहते हैं कि भले आप बहुत कुछ चीजें करने के लिए सोचो, परंतु डू वन थिंग एट ए टाइम, डू वन थिंग एट ए टाइम. तो ये आदत जब भी आप डालेंगे ना, तो जब मेडिटेशन में बैठेंगे ओनली मेडिटेशन थॉट्स विल कम, बिकॉज यू हैव टॉट योर माइंड टू डू वन थिंग एट ए टाइम. यू हैव, इवन दो यू हैव प्लान्ड मेनी थिंग्स, बट द डिसिप्लिन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम विल मेक योर एक्शन मोर एफिशिएंट एंड देन यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ. सो एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ इट वर्क्स.
थैंक यू दीदी. मैं समझता हूँ हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एंड आई विल जस्ट टेक वन मिनट और इसको ब्रीफली आप आंसर करें. तीन चार लोगों के प्रश्न हैं जो मेडिटेशन से रिलेटेड हैं, एंड आई बिलीव आप मेडिटेशन कराएंगे तो मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड. गणेश जनार्दन हमारे साथ फेसबुक पे हैं और वो पूछते हैं, दीदी कैन यू गिव अ वे दैट आई हैव एन अनइंटरप्टेड कनेक्शन विद परमात्मा. तो ये इनका प्रश्न है, ये मेडिटेशन में शायद एक्सपीरियंस करेंगे. इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है, सविता घंटे हमारे साथ यूट्यूब पे हैं, वो पूछते हैं, दीदी मेडिटेशन के डिटेल टेक्निक बताइए. आज आपने बहुत सारे स्टेप्स बताए दीदी, और शायद मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस भी करवाएंगे तो ये टेक्निक्स उनको समझ में आएगा. तीसरा मिलता जुलता प्रश्न ये है कि द स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, रेणु भट्ट का प्रश्न है, और वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे रेणु जी अभी, क्योंकि दीदी अभी मेडिटेशन कराएंगे. और चौथा एक और बात, हमारे एक फ्रेंड थे जिन्होंने सिंध पाकिस्तान से मैसेज किया है, और वो कहते हैं सभी को रिमेम्बरेंस देते हैं इंडिया में, और कहते हैं मेडिटेशन कितना देर करना चाहिए, आई मीन परफेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जिसमें हम पावरफुल महसूस कर सके मेडिटेशन को, ये प्रश्न पूछते हैं. मैं समझता हूँ हमारे पास आज चार पांच मिनट है मेडिटेशन एक्सपीरियंस करने के लिए. वन मिनट फॉर एन आंसर दीदी, एंड फिर हम मेडिटेशन में जा सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स हु जॉइंड अस टुडे, एंड आप सभी की तरफ से मैं मीरा दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ जो आज मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने डिटेल में हमारे क्वेश्चन को आंसर किया. थैंक यू सो मच मीरा दीदी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए.
थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लिसनर्स आस्किंग वंडरफुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो अभी हमको एक मिनट दिया है चार प्रश्न का जवाब देने के लिए. तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि राजयोग मेडिटेशन हैज थ्री स्टेप्स, यू नो, जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड एंड जर्नी आउटवर्ड्स. उसमें चार स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, रियलाइजेशन. तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप मेडिटेशन चालू करें, so always begin with initiation, that means contemplation on soul consciousness. So jab aap ye soul consciousness stage ko aap pakka karenge, aapka foundation mazboot hoga, uske aadhar se aap jab parmatma ke sath sambandh jodenge, to parmatma ke sath jo sambandh joda hai wo kaafi samay tak wo aap pakad ke rakh sakte hain. Ye jo prashna pucha tha na, तो कम से कम हम आधा घंटा, हम एक एक बारी हम बैठे तो कम से कम आधा घंटा ये तीन स्टेजेस को हम अनुभव करें. अगर हम तीन स्टेजेस में नहीं जा सकते, कोई हर्जा नहीं, तो एक स्टेज में भी हम गहरा चले जाए, वो अनुभव हमारे जीवन के अंग बन जाए. बाकी ये क्लियर बुद्धि में रहे कि मेडिटेशन इज नॉट suppressing the mind, meditation is not making the mind blank, meditation is not stop thinking. Aap to zarur thinking is there, but you are using your mind in a positive way. To aaj hum aapko meditation karayenge, usme aapko step by step batate rahenge commentary ke roop se, aap usi prakar se apne man ko le jaiye, to aap dheere dheere first step se second step and third step mein jaiye. थैंक यू वेरी मच. आप सभी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, हमको बहुत अच्छा लगा. तो होपफुली फ्रॉम नाउ यू आर एबल टू मेडिटेट बेटर इन द राइट वे. थैंक यू.
थैंक यू दीदी. मैं नाउ रिक्वेस्ट कि आप अभी हमें मेडिटेशन कराएं, और हर बार हमारे पास मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं तो उनके साथ मेडिटेशन करने का एक्सपीरियंस अलग होता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लीड अस फॉर मेडिटेशन फॉर नेक्स्ट 3-4 मिनट्स.
ओम शांति. आप जहां पर भी हो तो रिलैक्स होकर के बैठिए और सीधा बैठे और अपने पांव धरती पर आराम से रखिए, और हो सके तो आंखें खोल के बैठना. इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल यू मे क्लोज योर आईज, इट्स योर चॉइस. तो चलिए हम अभी रूहानी यात्रा पर चलते हैं. मन, बुद्धि और भावनाओं को बाहर की सब बातों से हटाकर अपनी ब्रुकुटी के बीच में स्थिर करते हैं. अपने आप को आत्मिक स्मृति में अपने आप को ब्रुकुटी में देखते हैं. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति बिंदु स्वरूप हूं, मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य बिंदु हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है. शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं. मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं. इस आत्मचिंतन में मैं आत्मा अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही हूं, तो मैं एक सेकंड में इस शरीर से निकल ऊपर ऊपर इस साकारी दुनिया से भी पार, पांच तत्वों से भी पार, मैं आत्मा अपनी घर के तरफ परंधाम में जा रही हूं. मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को लाल सुनहरी दुनिया में अपने आप को बिंदु स्वरूप में देख रही हूं. यहां सर्वत्र शांति ही शांति है. इस शांति धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में देख रही हूं. परमपिता ज्ञान सूर्य के समान ज्ञान शक्ति प्रकाश की किरणों को मुझ आत्मा के ऊपर बरसा रहे हैं. मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की इन किरणों में खो गई हूं. शिव बाबा शांति का सागर, मैं शांति की सागर में खो गई हूं. बाबा से मुझ आत्मा को सर्व शक्तियां मिल रही हैं। मैं आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। इन किरणों रूपी बाहों में परमात्मा ज्योति बिंदु में समा जाओ, खो जाओ। यह कितना आनंद और कितनी शक्तिशाली मिलन है। मैं आत्मा परमात्मा से सर्वशक्तियों का, शांति का, प्रेम का अनुभव करते हुए धीरे धीरे इस साकारी दुनिया के ओर अपना पार्ट बजाने के लिए वापस आ रही हूँ। मैं आत्मा अपने आप को इस साकारी शरीर में, साकारी शरीर में, साकारी दुनिया में अपने आप को ब्रुकुटी के बीच में देख रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु, शांति, शक्ति, प्रेम स्वरूप आत्मा। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू।